आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आईन मुल्क के लिए रहनुमाई करने वाली रोशनी है जो हर तरह वक्त पर खरी उतरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में अवाम से जोर देकर कहा है कि वो अगले महीने प्रयागराज में महाकुंभ में शिरकत करते हुए इत्तेहाद के जज्बे को अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि अगले साल आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही समिट भारत को मवाद की तख्लीक का एक आलमी मरकज बनाने की जानिब एक अहम कदम है। जनूबी कोरिया में तैयार हादसे में मरने वालों की तादाद 179 हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने से बहुत घने कोहरे और शदीद सर्दी की पेशगोई की है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। उसने भारत पर 333 रन से सबकत हासिल कर ली है। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने के 300 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आईन मुल्क की रहनुमाई के लिए एक रोशनी है। उन्होंने कहा कि यह बड़े एजाज की बात है कि अगले साल 26 जनवरी को भारत के आईन के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आईन हर माना में वक्त पर खरा उतरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल यौम आईन के मौके पर बहुत सी सरगर्मियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल जारी रहेंगी।
26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ।
प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई तफरीक नहीं बरती जाती और इस तरह का तनवो में इत्तेहाद दुनिया में कहीं नहीं देखने में आता। उन्होंने कहा कि कुंभ इत्तेहाद का भी महाकुंभ है। जनाब मोदी ने आवाम से जोर देकर कहा कि वो महाकुंभ में शिरकत करते हुए इत्तेहाद की रूह को अपनाएं। जनाब मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि कुंभ के इज्तिमा के लिए एक AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया गया है। कुंभ से मुतालिक तमाम तर मालूमात भारत की 11 जबानों में दस्तयाब रहेंगी।
महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है।
एनिमेशन के मौजू पर बात करते हुए जनाब मोदी ने खुशी का इजहार किया कि क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय KTB बच्चों में काफी मकबूल एनिमेशन सीरीज है। आकाशवाणी से KTB सीरीज हर इतवार सुबह 10:30 बजे नशर की जाएगी। इसे दूरदर्शन और दीगर OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फिल्म और तफरीही सनत को मुबारकबाद दी कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूती मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि ऐसा पहली बार है कि आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स समिट भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। उन्होंने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की मईशत की तरफ गामजन है, लिहाजा तख्लीकी मईशत से नई तवानाई पैदा हो रही है। उन्होंने भारत की पूरी तफरीही और तख्लीकी सनत से जोर देकर कहा कि वो वेव्स समिट का हिस्सा बन जाए। मन की बात के इस नशरी में जनाब मोदी ने सेहत के मैदान में भारत की दो बड़ी हसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली हसूलियाबी मलेरिया की रोकथाम में मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया कि आलमी सेहत तंजीम WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और 2023 के दरमियान भारत में मलेरिया केसेस की तादाद और अमवात में 80% की कमी आई है।
मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है।
उन्होंने ये वजाहत भी की कि कैंसर के बरवक्त इलाज का मतलब है किसी मरीज का 30 दिन के अंदर अंदर इलाज शुरू हो जाना, और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें एक बड़ा रोल अदा किया है। इस स्कीम की वजह से कैंसर के 90% मरीजों का इलाज बरवक्त शुरू किया जा सका है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी इंतखाब की जायजा मीटिंग इसके सदर दफ्तर में मुनक्किद हुई। पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने मीटिंग के एक जलसे से खिताब किया। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कौमी जनरल सेक्रेटरीज, सभी रियासती सुदूर रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरीज और तंजीम के इंतखाब के इंचार्ज और साथी इंचार्ज ने मीटिंग में शिरकत की। पार्टी जराय ने बताया कि इस जायजा मीटिंग में मंडल, जिला और रियासत के अहदेदारों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज की गई। पार्टी का मकसद अगले महीने की 15 तारीख तक 50% रियासतों में मंडल, जिले और रियासती ओहदों के लिए चुनाव मुकम्मल करना है। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने आज शिमला के राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला सुखविंदर सिंह सुखू, रियासत के काबिनी वुजरा के हमरा मौजूद थे। इससे कबल 24 दिसंबर को मरकजी हुकूमत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस संधवालिया की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री का इत्तलानामा जारी किया था। एक जेजू परवास जिसमें 181 मुसाफिर सवार थे, आज सुबह सवेरे बैंकॉक से मुआन बैन अलाक्वामी हवाई अड्डा जाते हुए हादसे का शिकार हो गई। अफसरान के मुताबिक हादसे में कम 179 अफराद हलाक हो गए। जनूबी कोरिया की आग बुझाने वाली एजेंसी ने बताया है कि परवास के अमले के 2 अफराद जिंदा बचे हैं और 3 दीगर लापता हैं। जिन लोगों के मरने की तस्दीक हो गई उनमें 83 खवातीन और 82 मर्द हैं। मरने वालों में ऐसी 11 लाशें भी शामिल हैं जिनकी जिन्स की शनाख्त नहीं हो सकी है। ट्रांसपोर्ट की वजारत ने बताया कि बचाव का काम जारी है। पुलिस, फौज और साहिली गार्ड्स के 700 से ज्यादा अफराद कार्रवाई में शामिल हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चला है कि यह तैयारा रनवे से उतरकर एक दीवार से जा टकराया और इसमें आग लग गई। जनूबी कोरिया के कारगुजार सदर चोई सेंग मोंग ने हादसे की जगह का दौरा किया और सभी दस्तियाब जराए को फौरी काम मिलाने की हिदायत की। कोरिया हवाई अड्डों के कॉरपोरेशन ने तस्दीक की है कि मुआन बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे जाने वाली सभी परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका में मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम का दिफा किया है। इस प्रोग्राम के तहत इंतहाई हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों को अमरीका आने की इजाजत है। एक न्यूज मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो H-1B वीजा में यकीन रखते हैं जो उन गैर मुल्की हजारों कारकुनों को दिया जाता है जो रोजगार के खास मौकों के लिए अमरीका आते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार प्रोग्राम है। जनाब ट्रंप ने अपनी पहले मुद्दत में गैर मुल्की कारकुनों के वीजा पर बंदिश लगा दी थी और इस प्रोग्राम की नुक्ताचीनी की थी, लेकिन 2024 की मुहिम में उन्होंने ऐसे गैर मुल्की कारकुनों को कानूनी हैसियत देने के सिलसिले में खुलेपन का इजहार किया था जिन्होंने किसी अमरीकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। माहरीन इक्तसादियात ने इस सिलसिले में दलील दी है कि इस प्रोग्राम से अमरीकी कंपनियों में मुकाबला जाती रुझान बरकरार रहेगा और उनके कारोबार में इजाफा होगा। नीज अमरीका में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया मौशी तावन और तिजारती समझौते ECTA ने अपनी गैर मामूली कामयाबी के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं जिससे बाहमी तरक्की और दोनों मुल्कों की मईशत की तकमील का इजहार होता है। इससे दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात MSMEs में नए मौके और रोजगार के साथ साथ इकतसादी शराकतदारी को तकवीत मिलती है। वजारत तिजारत और सनत ने कहा है कि हुकूमत वजीर आजम मोदी के 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन को पूरा करने के लिए मजबूत तआवुन और इख्तराई इकदामात की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए वक्फ है। دلی پولیس نے بھارت میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیش کے 7 شہریوں کو ان کے وطن بھیجا ہے، جن میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ خبر ملی ہے کہ یہ لوگ گروگرام میں رہ رہے تھے۔ دلی پولیس کے مطابق کل ان مائیگرنٹس کے غیر قانونی طور پر رہنے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا نے دلی اور این سی آر خطے میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی امیگرینٹس کی شناخت کر کے ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم چلانے کا حکم دیا تھا۔ دلی پولیس مشتبہ بنگلہ دیشی امیگرینٹس کی شناخت کرنے کے لیے مشکوک علاقوں میں لوگوں کے ووٹر آئی ڈی اور آدھار کارڈ چیک کر رہی ہے۔ پولیس ان راستوں کی شناخت کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے جس سے یہ غیر قانونی مائیگرینٹس بھارت آئے تھے۔ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو کل اپنے خلائی ڈاکنگ تجربے اسپیڈکس کو خلا میں چھوڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایک انٹرویو میں خلائی محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بتایا کہ سال کے اختتام پر اسرو کا مشن تاریخی نوعیت کا ہوگا، کیونکہ یہ خلا میں 2 سیٹلائٹ کی ڈاکنگ یا انہیں ملانے کے ایک نایاب عمل سے گزرے گا۔ ڈاکٹر سنگھ نے بتایا کہ اسپیڈکس مشن سے بھارت ملکوں کی ایک خصوصی لیگ میں شامل ہو جائے گا جو خلا میں ڈاکنگ کے عمل کے مہارت کے حامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک منفرد انداز نظر کا حامل PSLV راکٹ 2 سیٹلائٹس کو خلا میں چھوڑے گا جو دیسی ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ بھارتی ڈاکنگ سسٹم کی یہ دیسی ٹیکنالوجی اس پیچیدہ عمل کو سر انجام دے گی۔ سری ہری کوٹا کے پہلے لانچ پیڈ سے کل رات 9:58 پر اس کو لانچ کیا جائے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ملک کے شمالی حصے میں سرد لہر کی وارننگ جاری کی ہے جو آج سے شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ نے اپنی پیش گوئی میں کہا ہے کہ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے سبب اگلے 2 دن کے دوران شمال مغربی بھارت میں کم سے کم درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری سیلسیس کی کمی کا امکان ہے۔ جموں کشمیر میں 270 کلومیٹر طویل سری نگر جموں قومی شاہراہ آج گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ کشمیر خطے میں خراب موسم اور شدید برفباری کی وجہ سے یہ شاہراہ 2 دن سے بند تھی۔ ٹریفک حکام نے بتایا ہے کہ شاہراہ پر مسافر گاڑیوں کی آمد و رفت دونوں طرف سے کھول دی گئی ہے۔ ادھر ہماچل پردیش میں 2 دن شدید برفباری اور بارش کے بعد موسم صاف ہو گیا ہے، اگرچہ سرد لہر اب بھی جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے شدید سردی سے آگاہ کیا ہے۔ میلبورن میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے 4th ٹیسٹ کے 4th دن اسکاٹ بولانڈ اور نتھن لیون کی جوڑی کے 55 رن کی بدولت آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں 9 وکٹ پر 228 رن بنائے۔ یہ جوڑی ناٹ آؤٹ رہی۔ اس طرح آسٹریلیا بھارت سے 333 رن کی سبقت لے گیا۔ تیز گیند باز جسپریت بمراہ نے 4 وکٹ لیا اور ایک ہی اوور میں ٹریوس ہیڈ اور مشیل مارش کو آؤٹ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے بھارت کے لیے ٹیسٹ میچوں میں 200 وکٹ لے کر آج ایک نیا ریکارڈ بنایا۔ محمد سراج نے 3 وکٹ لیے۔ 5 میچوں کی یہ سیریز فی الحال 1-1 سے برابری پر ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے لکشیہ سین نے کنگ کپ بین الاقوامی بیڈمنٹن اوپن 2024 کے پہلے میچ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے آج فرانس کے کھلاڑی ایلیکس لینئر کو 21-17 21-11 سے شکست دی۔ اس سے پہلے لکشیہ کو چین کے ہوجیان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لکشیہ اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے واحد کھلاڑی تھے۔ بھارت کی کنیرو ہمپی دوسری بار ریپڈ ورلڈ چیس چیمپئن بن گئی ہیں۔ نیویارک میں انہوں نے عالمی ریپڈ چیمپئن شپ کے فائنل راؤنڈ میں انڈونیشیا کی آئرین سکندرا کو ہرا دیا۔ کنیرو ہمپی نے 11 راؤنڈ کے بعد 8.5 پوائنٹس حاصل کیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے انہیں اس جیت پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطاب حاصل کرنے والی وہ واحد بھارتی ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آئین ملک کے لیے رہنمائی کرنے والی روشنی ہے جو ہر طرح وقت پر کھری اتری ہے۔ وزیراعظم نے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے پریاگ راج میں مہاکمبھ میں شرکت کرتے ہوئے اتحاد کے جذبے کو اپنائیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ اگلے سال عالمی آڈیو ویژول تفریحی سمٹ بھارت کو مواد کی تخلیق کا ایک عالمی مرکز بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 179 ہو گئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن تک پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں گھنے سے بہت گھنے کوہرے اور شدید سردی کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔